నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. దూసరా అధ్యాయ జిస్మే భగవాన్ ఆత్మజ్ఞాన్ అర్జున్ కో సునా రహే హై. హమ్నే హమారి పిచ్లి సిటింగ్ మే 23వా శ్లోక్ లియా. నయనం ఛిందంతి శస్త్రాణి, నయనం దహతి పావక, న చైనం క్లేదయంత్యాపో, న శోషయతి మారుతః. జిస్ శ్లోక్ మే భగవాన్ ఆత్మా కే సశక్త హోనే కా ఏక్ బహుత్ హీ సుందర్ వివరణ కర్తే హువే ఉస్కా విజ్ఞాపన్ కర్ రహే థే. హమ్నే ఉస్కీ చర్చా కీ కి జైసే కోయి సేల్స్మెన్ హోతా హై, వో కిసీ ప్రోడక్ట్ కా విజ్ఞాపన్ కర్తా హై, తో వో జో పదార్థ హై, వో జో ప్రోడక్ట్ హై, వో కితనా టికావు హై. ఔర్ కితనా వో కామ్ ఆ సక్తా హై ఇస్కా బఖాన్ కర్తా హై. తో యహాన్ పర్ మానో భగవాన్ ఇన్ కుచ్ దో తీన్ శ్లోకో మే, ఆజ్ కా భీ శ్లోక పిచ్లే శ్లోక కే హీ సందర్భ మే భగవాన్ కహ రహే హై, తో విజ్ఞాపన్ కర్ రహే హై ఆత్మా కా కి అర్జున్ తుమ్ జిస్ వ్యక్తియో కే బారే మే చింతా కర్ రహే హో, సర్వప్రథమ్ వో శరీర్ నహీ ఆత్మా హై. ఔర్ వో జో ఆత్మా హై వో ఆత్మా కే గుణ భగవాన్ అర్జున్ కో ఇస్ ప్రకార్ సే బతా రహే హై కి మానో అర్జున్ నే కభీ ఆత్మా కే విషయ మే సునా హీ నహీ. ఐసా తో హో నహీ సక్తా కి అర్జున్ నే ఆత్మా కే విషయ మే సునా నా హో. 5000 వర్ష పూర్వ ఆజ్ భీ కలియుగ్ మే లోగ్ ఆత్మా కే విషయ మే బహుత్ బోల్తే రహతే హై. తో 5000 వర్ష పూర్వ అర్జున్ నే అవశ్య హీ ఆత్మా కే విషయ మే సునా హోగా, పరంతు స్వయం జో ఉస్ ఆత్మా కే శ్రోత హై ఉన్కే ముఖ్ సే సున్నా, జిన్హోనే జిన్కే వజే సే ఆత్మా మే యే సారే గుణ పాయే జాతే హై కి వో కిసీ భీ అస్త్ర శస్త్ర సే కాటా నహీ జా సక్తా, జలాయా నహీ జా సక్తా, సుఖాయా నహీ జా సక్తా. యే సారే జో ఆత్మా కే గుణ హై యే భగవాన్ అర్జున్ కో ఔర్ అర్జున్ కే ద్వారా హమే ఇస్ భౌతిక ప్రకృతి కే సందర్భ మే బతా రహే హై కి భౌతిక ప్రకృతి కే సందర్భ మే హమ్ కైసే ఆత్మా కో సమ్ఝే. హాలాంకి యది ఆధ్యాత్మిక సంసార్ మే ఆత్మా కా వివరణ భగవాన్ దేతే తో వహాన్ పర్ ఇస్ ప్రకార్ కా వివరణ దేనే కీ ఆవశ్యకతా నహీ పడతీ భగవాన్ కో కి కిసీ భీ అస్త్ర శస్త్ర సే కాటా నహీ జా సక్తా, క్యూంకి వహాన్ పర్ ఆధ్యాత్మిక సంసార్ మే మృత్యు తో హై నహీ. ఔర్ ఇస్ భౌతిక సంసార్ మే కిసీ భీ భౌతిక శరీర్ కి మృత్యు ఇన్ సబ్ ఘటనాఓ సే దేఖీ జాతీ హై, జలాయా జానా, కాటా జానా, కిసీ జల్ మే డూబ్ కర్ మర్ జానా, యే జో అలగ్ అలగ్ ప్రకార్ సే యే శరీర్ అంత హో జాతా హై, తో యే ఆధ్యాత్మిక సంసార్ మే తో మృత్యు హై హీ నహీ. తో వహాన్ పర్ ఇస్ ప్రకార్ కా వివరణ దేనే కీ కోయి ఆవశ్యకతా హీ నహీ. హాలాంకి వహాన్ పర్ తో ఆత్మా కే వివరణ దేనే కీ ఆవశ్యకతా నహీ, వహాన్ పర్ శరీర హై హీ నహీ, కేవల్ సబ్ ఆత్మా హీ హై, సచ్చిదానంద హై. तो इसलिए जैसे हमने इसकी चर्चा की थी कि एक तो भौतिक संसार में और अर्जुन रणभूमि पर है, तो रणभूमि पर ये जलाया जाना, काटा जाना, ये सब कुछ बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य है वहां पर ये सब कुछ पाया जाना। लेकिन उसके बावजूद भगवान यहां पर इन श्लोकों के द्वारा प्रस्थापित कर रहे हैं कि आत्मा इससे अनभिज्ञ है। तो आज का श्लोक भी पिछले श्लोक के ही कनेक्शन में भगवान आगे सुना रहे हैं। अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातनः अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातनः अच्छेद्योयम अधायोयम अक्लेद्यो सोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थान अचलोयम सनातनः। तो इस श्लोक में भगवान फिर मानो कि दोहरा रहे हैं आत्मा के वही गुण कि अच्छेद्यो, कि आत्मा को कोई छेद या भेद नहीं कर सकता या शस्त्रों से काट नहीं सकता। अधायोयम अक्लेद्यो, आत्मा दाह, दाह का अर्थ है अग्नि, तो किसी अग्नि के द्वारा आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। यहां पर एक गुण का एडिशन भगवान कर रहे हैं अक्लेद्यो, कि आत्मा को घोला नहीं जा सकता, इट इज नॉट सॉल्युबल। तो मानो भगवान थोड़ी वैज्ञानिक भाषा यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसॉल्युबल, सोल इज इनसॉल्युबल। और असोष्य, असोष्य का अर्थ है कि सुखाया नहीं जा सकता। और उसके पश्चात फिर आत्मा नित्य है, सर्वगत स्थानुर अचलो और सनातन। तो यदि इस श्लोक का विभाजन करें तो दो भाग में इस श्लोक का विभाजन होता है। पहले दो पंक्तियों में चार प्रकार के निषेधों द्वारा जीवात्मा का वर्णन भगवान कर रहे हैं, और फिर अंतिम दो पंक्तियों में पांच प्रकार के विधियों द्वारा जीवात्मा का वर्णन। तो पॉजिटिव नेगेटिव यदि इस प्रकार से हम समझें कि क्या क्या आत्मा के साथ नहीं हो सकता और क्या क्या आत्मा के साथ हो सकता है। तो यहां पर भगवान एक पूरा फुल प्रूफ एक फिलॉसफी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, एक जो दार्शनिक तत्व है आत्मा का वो प्रस्थापित कर रहे हैं हर एंगल से। तो यदि चार प्रकार के निषेधों पर हम फिर से चर्चा करें तो जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, घोला नहीं जा सकता, हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो यहां पर जो सबसे पहला निषेध आत्मा का बताया है, इसमें यदि हम श्रीमद् भागवत से वृत्रासुर का उदाहरण लें तो छठे स्कंद में वृत्रासुर, इनकी कथा है कि वृत्रासुर वो भगवान के अनन्य भक्त रहे, किसी कारणवश उन्हें शाप मिला और महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर बने, असुर, एक असुर बने। लेकिन इनका शरीर इतना सुदृढ़ था, वज्र के समान इनका शरीर था, कि देवतागण इतनी कोशिश करने के बावजूद अब देवताओं के पास जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। यहां तक कि राक्षस भी, जिनके पास इतनी सिद्धियां होती हैं, वो भी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों के सामने वो हार जाते हैं। तो अब क्योंकि ये एक असुर योनि में पैदा हुए, और देवताओं का एक कर्तव्य है कि असुरों का नाश करना, तो हालांकि कथा बहुत सुंदर है और बहुत विस्तार से है छठे स्कंद में, संक्षिप्त रूप में यह है कि अब देवतागण वृत्रासुर का वध करना चाहते थे, और हैं वृत्रासुर भगवान के शुद्ध भक्त, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अब एक असुर की भूमिका निभा रहे थे। तो अब देवतागण, उन्होंने यहां तक प्रयास किया, देवराज इंद्र ने भी प्रयास किया वृत्रासुर के शरीर को खत्म करने का। हम यहां पर केवल शरीर का उदाहरण ले रहे हैं, आत्मा तक तो पहुंचे नहीं है। तो वो वृत्रासुर के शरीर को भी नहीं काट पा रहा था, देवराज इंद्र का वज्र जो कि सारे अस्त्र शस्त्रों में, देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्रों में यदि कोई उच्च कोटि का, जो सबसे शक्तिशाली यदि कोई शस्त्र है तो वो है देवराज इंद्र का वज्र, थंडरबोल्ट। देखिए इस भौतिक संसार में बारिश के मौसम में कितनी घटनाएं हम सुनते हैं कि बिजली से किसी का शरीर अंत हो गया, तुरंत वहीं जल के भस्म हो गया, या हमारा लैपटॉप भस्म हो गया था पिछले हफ्ते, डायरेक्टली भी बिजली नहीं गिरी थी, इनडायरेक्टली कहीं स्विच बोर्ड से। तो सोचिए वज्र की शक्ति कितनी, और वो भी देवराज इंद्र का पर्सनल वेपन है थंडरबोल्ट। लेकिन वृत्रासुर का शरीर, वो जैसे कई चीजें होती ना, वाटरप्रूफ, ये प्रूफ वो प्रूफ, तो देवराज इंद्र का थंडरबोल्ट प्रूफ वृत्रासुर का शरीर। वो काटने का कोशिश कर रहे, कट नहीं रहा है उनका शरीर, वृत्रासुर का शरीर। सोचिए वो वज्र तो उनका ऐसा है कि यदि कहीं पर स्पर्श भी हो जाए, उसके निकट भी कोई आ जाए तो जल के भस्म हो सकता, यहां पर उसे काटने का कोशिश कर रहे थे वो वृत्रासुर के शरीर। तो यहां पर यह बताया गया है कि वृत्रासुर के शरीर का ऐसा गुण था कि किसी अस्त्र शस्त्र से वो काटा नहीं जा रहा था, और वो गुण वृत्रासुर के शरीर में, वृत्रासुर के जो आत्मा का गुण है वो उस पर आ रहा था। जैसे यहां पर आत्मा का ये गुण बताया गया है कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तो जो बड़े बड़े योगी होते हैं, जो अपने आत्मा का इस प्रकार से साक्षात्कार कर लेते हैं, या भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो आत्मा के स्वरूपों को शरीर पर ढालकर शरीर को उस प्रकार से बना सकते हैं। दे कैन स्पिरिचुअलाइज द बॉडी बिकॉज ऑफ देयर प्योरिटी, बिकॉज ऑफ देयर रियलाइजेशन। तो यहां पर अब देवराज इंद्र और अन्य देवतागण भगवान के पास गए कि अब आप ही कोई उपाय बताइए। तो भगवान ने देखिए उपाय ये बताया कि एक ऋषि मुनि है जिनका नाम है दधीची, उनके पास जाओ और उनकी हड्डियां मांगो। उनकी हड्डियों से वज्र बनाओ, और उस वज्र से वृत्रासुर की हत्या हो सकती है। तब ये सारे देवता ये सब मिलकर दधीची मुनि के पास जाते हैं और दधीची मुनि से क्या मांगते डोनेशन में देखिए। अब कई बार हम जन्माष्टमी का डोनेशन मांगने जाते हैं, अलग अलग कुछ डोनेशन मांगने जाते हैं, यहां पे देखिए दधीची मुनि से डोनेशन मांग रहे हैं आपकी हड्डियां, और वो भी ऐसा नहीं कि एक दो हड्डी यहां वहां से, कुछ कई बार ट्रांसप्लांट होता है ना, कुछ कोई ट्रांसप्लांटेशन नहीं चल रहा था, सब हड्डियां चाहिए, मतलब मरना है आपको। और उन उस हड्डियों से, उसके निचोड़ से वज्र बनाया जाएगा। तो सोचिए यदि वृत्रासुर का शरीर इतना ज्यादा सशक्त, तो सोचिए दधीची मुनि की हड्डियां कितनी स्ट्रांग है, कि वृत्रासुर के शरीर को भी जो भेद दे। तो दधीची मुनि वो फिर देवताओं को थोड़ा वहां पर आत्मज्ञान सुनाने शुरू करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम किसी से किसी का प्राण प्राण मांग रहे हो, और वो भी किस लिए, स्वयं के प्राण बचाने के लिए। क्या दधीची मुनि वो तो पूर्ण प्रकार से निरासक्त थे अपने शरीर से, हड्डियों से जो भी, तो उन्होंने कहा कि यदि ये भगवान का आदेश है, यदि भगवान की योजना है, तो उनकी योजना को सिद्ध करने के लिए मैं अवश्य ही अपने प्राण को, अपने शरीर को, मेरी हड्डियों को दूंगा। तो दधीची मुनि की हड्डियों से वो वज्र बनाया गया, और उस वज्र से फिर वृत्रासुर के शरीर का खत्म, शरीर को खत्म किया गया, और अब खैर उनके आत्मा को तो भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो यहां पर ये अगर कोई प्रश्न पूछे कि जीवात्मा को किसी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता, परंतु यदि कोई विशेष अस्त्र शस्त्र इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि वृत्रासुर के विशेष शरीर को विशेष वज्र ने काटा, तो यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि आत्मा को भी यदि किसी विशेष शस्त्र से काटा जाए, तो हो सकता है कि वो भी कट जाए। आगे चल के वैज्ञानिक कोई ऐसा न्यूक्लियर बॉम्ब बना दे कि आत्मा को भी वो चिंदी चिंदी कर दे, भगवान कहते हैं नहीं। तो यहां पर मानो अर्जुन, अब इस श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो भगवान फिर से उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं। हमको लग रहा होगा कि भगवान फिर से क्यों दोहरा रहे हैं, पिछले श्लोक में तो कहा था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, तो फिर से क्यों दोहरा रहे हैं। तो मानो अर्जुन ने पूछा भगवान से कि किसी विशेष शस्त्र से क्या आत्मा को काटा जा सकता है, क्योंकि अर्जुन स्वयं इतने सारे विशेष शस्त्रों को धारण किए हुए थे। तो भगवान ने कहा नहीं, किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में इस आत्मा को किसी भी प्रकार के विशेष अस्त्र से काटा नहीं जा सकता, यहां तक कि वृत्रासुर का शरीर, लेकिन वो वज्र दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ वज्र भी वृत्रासुर के आत्मा को नहीं काट सका। और ये सब तो छोड़ दीजिए, जब भगवान भी किसी असुरों का वध करते हैं, तो उनके आत्मा का हनन कभी नहीं हो सकता, भगवान के हाथों से भी नहीं हो सकता। तो बाकी तो छोड़ दीजिए, उनके आत्मा को मुक्ति मिलती है और यथानुरूप उनका आत्मा जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। तो अगला प्रश्न यदि अब अर्जुन पूछे कि हमें वो जो लाक्षाग्रह में जलाने का षड्यंत्र रचा था दुर्योधन शकुनी इत्यादि ने, तो भगवान अब आगे जब ये कह रहे हैं कि इस आत्मा को अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, तो मानो अर्जुन का ये प्रश्न है कि कुछ ऐसे प्रज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनको यदि किसी अन्य धातु से मिला दिया जाए, जैसे पत्थर, पत्थर को कोई जला नहीं सकता, परंतु यदि जैसे कि दुर्योधन ने वो जो महल बनाया था लाक्षाग्रह, वो महल जो बनवाया दुर्योधन ने पत्थर के साथ लाख, या जिसे हम मोम कहते हैं, तो उसका मिश्रण करके वो महल बनाया गया। और उसका प्रयोजन एक ही था कि वो पांच पांडवों को, महारानी कुंती को वहां पर जला के भस्म कर दे। तो अर्जुन को ये बात याद थी, हालांकि वहां पर फिर महात्मा विदुर की सहायता से वो लोग बचे। तो अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि किसी विशेष प्रज्वलनशील पदार्थ के द्वारा यदि आत्मा को जलाने की कोई कोशिश करे, क्योंकि अर्जुन के पास ऐसे भी शस्त्र थे जो अग्नेय शस्त्र के अनुसार, जो कि सबको जलाकर भस्म कर सकते थे। तो यहां पर फिर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी विशेष प्रयोजन से आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। फिर अब भगवान ने अर्जुन, और कोई प्रश्न और कोई संदेह उनके मन में न रहे, तो एक और गुण आत्मा का ऐड कर रहे हैं कि ये अक्लेद्य, ये आत्मा को किसी भी द्रव या रसायन में घोला नहीं जा सकता। अब शास्त्रों के अनुसार कई ऐसे द्रव हैं, कई ऐसे रसायन हैं, जैसे एक हमारे शास्त्रों में बताया गया अम्लराज करके एक द्रव है। ये ऐसा द्रव है, हालांकि पृथ्वी पर इतना वो पाया नहीं जाता, ये ऐसा द्रव है कि कोई भी धातु, कोई भी वस्तु इसके अंदर डाली जाए तो घुल जाएगी। जैसे आप देखिए तेजाब, एसिड होता है, एसिड के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं कि वो बहुत कठोर से कठोर किसी वस्तु या किसी चीज को वो, उसके ऊपर प्रभाव वो तेजाब कर सकता है। या तेजाब छोड़ दीजिए, लौंग का पानी होता है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि बड़े पीपल के वृक्ष को वो खत्म कर दे। उसके जड़ों में यदि लौंग का पानी यदि उसके जड़ों में कोई डालता जाए तो बहुत कम समय में उसके जड़ को वो खा लेता है, लौंग का पानी। लौंग जानते हैं, तो उसके जड़ों को खा लेता है और बड़े पीपल या बरगद के वृक्ष को वो धराशायी कर सकता है। तो यहां पर कुछ उदाहरण अर्जुन को याद आ रहे होंगे कि कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे द्रव हैं जिसमें कोई भी वस्तु को घोला जा सकता है। भगवान कहते हैं नहीं, जो भी कुछ है आत्मा वो इनसॉल्युबल, उसके परे है। फिर जीवात्मा को हवा से सुखाया नहीं जा सकता। तो अब प्रलय काल की स्थिति अर्जुन को याद आ रही कि शास्त्रों के अनुसार प्रलय काल, जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी के 100 वर्ष जब पूरे होते हैं, महाप्रलय जो होता है, तो प्रलय काल के विषय में बताया गया है कि 100 वर्ष बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। जब प्रलय काल शुरू होता है, क्या प्रलय होने वाला है, तो 100 वर्ष बारिश की एक बूंद नहीं गिरती। और सूरज की जो गर्मी है वो 12 गुना बढ़ जाती है। और ऐसी गर्मी में जो समुद्र हैं वो सारे सूख जाते हैं। कल्पना कीजिए, समुद्र, जितने समुद्र हैं, केवल ये छोटी सी पृथ्वी पे जितने समुद्र, वो नहीं, पूरे सृष्टि में, भौतिक जो प्रकृति है उसमें जितना जल है, नदियों में, समुद्रों में, सरोवरों में, वो सब प्रलय काल के समय सूख जाता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि 100 वर्ष यदि जल की एक बूंद न गिरे और यदि सूरज का जो ताप है वो 12 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाए, समुद्र सारे सूख जाएं, नदियां सारी सूख जाएं, सरोवर सारे सूख जाएं, आत्मा नहीं सूख सकता। क्योंकि वो आत्मा उस प्रलय के पश्चात भी आत्मा जो है वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, और फिर जब पुनः सृष्टि होती है तो महाविष्णु के शरीर से फिर वो आत्मा एज इट इज वो आते हैं। तो यहां पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण में जो अब अर्जुन और तर्क वितर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रलय काल के समय उस समय आत्मा का क्या होता है, क्योंकि बोलते हैं ना कि अरे प्रलय आ गया, सुना है प्रलय आ गया, प्रलय सब कुछ खत्म, लेकिन आत्मा को कोई नहीं खत्म कर सकता, कोई सुखा नहीं सकता उस काल में भी। तो यहां पर अब आगे भगवान पांच प्रकार के विधियों द्वारा जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं कि जीवात्मा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल और सनातन। अब तक हमने आत्मा के कुछ गुण सुन रखे हैं भगवान के ही मुख से कि कैसे वो अनित्य है, कैसे वो नित्य है, कैसे वो सनातन है, ये सब गुण सुन रखे हैं। परंतु यहां पर अब भगवान इन श्लोकों के संदर्भ में फिर से उन गुणों को अर्जुन को सुना रहे हैं। तो यहां पर अब नित्य का अर्थ भगवान दे रहे हैं कि जो इतिहास के परे हो। श्रील प्रभुपाद ने अपने ट्रांसलेशन में नित्य को ट्रांसलेट किया एवरलास्टिंग, कि न तो जिसका कोई भूत है न कोई भविष्य, केवल वर्तमान। भविष्य नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नहीं है फिर आगे, कि ऐसा नहीं कि भविष्य काल में कुछ परिवर्तन उस आत्मा में हो जाता, नहीं, वो नित्य रहता है। तो इतिहास के परे भगवान यहां पर अर्जुन को आत्मा का ये गुण याद दिलाते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम भीष्म, द्रोण, कृपा इत्यादि इनके भविष्य की चिंता कर रहे हो कि मैं इन्हें मारूंगा तो इनके भविष्य को क्या होगा, या भविष्य में इनके संबंध में जो सारे हैं, सारे योद्धाओं के संबंध में जो परिवार हैं, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, उनके खानदान, उनके वंशज, उनका क्या होगा। तो यहां पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो आत्मा है ये इतिहास के परे है। यदि तुम्हें मैं पूछूं कि तुम इनका इतिहास निकालो, इन सब आत्माओं का जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, जिनको तुम्हें मारना है, जिनके शरीरों को तुम्हें मारना है, आत्मा को तो नहीं मार सकते, तो यदि मैं तुम्हें पूछूं कि इनका इतिहास बताओ, क्योंकि यदि इतिहास बताओगे तब जाकर तुम ये बता पाओगे कि भविष्य इनका क्या होगा, है कि नहीं। जैसे किसी ज्योतिषी के पास कोई जाता है तो वो ज्योतिष पहले इतिहास बताता है ना, फिर बताता है कि भविष्य में क्या होगा। तो यहां पर भगवान अर्जुन को ये पूछ रहे हैं कि तुम आत्मा का ये जो गुण है, आत्मा के इस गुण को समझते हुए तुम यदि ये चीज बता सकते हो कि इनका इतिहास क्या रहा होगा, कहां से इनका इतिहास शुरू है, नहीं। इसलिए प्रभुपाद ने अपने इंग्लिश ट्रांसलेशंस में लिविंग एंटिटी, आत्मा के विषय में एक और शब्द इस्तेमाल किया, बहुत ही उपयुक्त शब्द, सिंस टाइम इमेमोरियल। प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे द सोल इज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, इमेमोरियल का अर्थ है कि हमारे मेमोरी के परे, हमारी स्मरण शक्ति के परे। और जितने भी अन्य सूत्र हैं भगवान के जिनमें स्मरण शक्ति बहुत प्रबल है, उनके भी स्मरण शक्ति के परे ये आत्मा का इतिहास है। तो क्योंकि आत्मा का इतिहास तुम पीछे जाकर नहीं ढूंढ सकते कि शुरुआत कहां से हुई है इस आत्मा की, तो तुम भविष्य में भी कहां तक आगे जाओगे, तो इसलिए वर्तमान में रहो। क्योंकि अर्जुन अब जो भविष्य की चिंता कर रहे थे, तो यहां पर नित्य का ये अर्थ देते हुए भगवान अर्जुन को वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिए बोल रहे हैं. बी इन प्रेजेंट बिकॉज यू कांट गो इन द पास्ट, सो डोंट बॉदर टू गो इन द फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट. इसलिए आत्मा को यहां पर भगवान ने नित्य कहा. आगे अब सर्वगत, सर्व का अर्थ है सर्वत्र, गत का अर्थ है गया हुआ. तो इसे क्या समझ में आया कि आत्मा सब जगह पर व्याप्त है. आत्मा इज ऑल परवेडिंग. अब यहां पर ध्यान में रखना होगा कि ऑल परवेडिंग का अर्थ यह नहीं कि वो भगवान बन चुका है. जैसे भगवान वो ऑल परवेडिंग है, उस प्रकार से यदि आत्मा को भी सर्वगत भगवान बोल रहे हैं तो फिर भगवान में और आत्मा में क्या अंतर हुआ, हम में और भगवान में क्या अंतर हुआ? नहीं, वो मायावादी सिद्धांत है जिसका खंडन हम अगले श्लोक में करेंगे, मायावादी सिद्धांत का. तो यहां पर सर्वगत, सर्वगत का अर्थ है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, कोई भी देश काल पात्र कहीं पर भी, आत्मा का ये जो स्वरूप है सच्चिदानंद स्वरूप, या आत्मा का नित्य होना ये जो स्वरूप है, ये सब जगह व्याप्त रहता है. जैसे प्रभुपाद इसके संदर्भ में एक उदाहरण दिया करते थे कि आगरा का जो जुम्मा मस्जिद है उसका जो पत्थर का गुम्बद है उसमें पीपल का वृक्ष उगा हुआ है. प्रभुपाद ने उदाहरण दिया. कितनी बार हमने देखा है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट से अब हम देखते हैं पीपल का कोई पौधा उगा हुआ है, कॉन्क्रीट से आया, वहां पर कोई फर्टाइल सॉइल नहीं, किसी ने जाकर वहां पर बीज नहीं डाला. प्रभुपाद ये उदाहरण दिया करते थे सर्वगत के गुण को बताते हुए कि सी लाइफ इज इवन ओवर देयर, कि जुम्मा मस्जिद, आगरा के जुम्मा मस्जिद के पत्थर के गुम्बद से पीपल का वृक्ष आ रहा. प्रभुपाद ने पूछा हु प्लांटेड द सीड देयर, मैं बंबई में था वहां पर मैंने देखा एक हमारे भक्त उनके बालकनी टाइल, टाइल के बीच से पौधा उग रहा है. ये ग्लेज टाइल्स होते हैं, ग्लेज टाइल्स, वो टाइल्स के बीच से पौधा उग रहा है और वो टाइल्स को क्रैक किया है. तो वहां पर कौन वो क्या फर्टिलाइजर डाल रहा है, कौन उसको पानी डाल रहा है? तो सर्वगत, ये देखिए भगवान इतना विस्तार से एक एक गुण को, आत्मा के एक एक गुण को बता रहे हैं. ये इसलिए कि मानो भगवान जान रहे हो कि आगे चल के जो वैज्ञानिक है ये ऐसा प्रस्ताव सामने रखेंगे कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो केवल किसी स्थितियों में ही पाया जा सकता है. जैसे प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में इस गुण को लेते हुए प्रभुपाद देखिए कितनी निडरता से लिखे देयर इज लाइफ ऑन सन प्लैनेट. प्रभुपाद का विश्वास देखिए भगवान के इन वाक्यों के ऊपर. प्रभुपाद लिखते हैं लुकिंग इन टू दिस क्वालिटी ऑफ द सोल ऑफ बींग सर्वगत वी कैन से दैट देयर इज लाइफ ऑन सन प्लैनेट, ऑन सन ग्लोब. और प्रभुपाद उसको अपने तरीके से प्रूव भी करते. प्रभुपाद कहते हैं जस्ट लाइक वी ऑन द अर्थ प्लैनेट मेजॉरिटी इज द अर्थ एलिमेंट. प्रधानता क्या है? ये जो मांस हमारे शरीर पे इतना है, ये इसकी प्रधानता है हमारे शरीर में, मांस की प्रधानता. तो ये मांस की प्रधानता ये दिखा रही है कि वी आर अर्थली बींग्स. तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जो सूर्य लोक में रहते हैं उनके शरीर में प्रधानता क्या होगी? फायर. तो वहां पर जो जीव घूम रहे हैं उनके शरीर अग्नि की तरह, जैसे आप देखो अग्नि के आकार में कोई पुरुष घूम रहा है, वैसे। जैसे अभी देखिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स लेके आजकल ये हॉलीवुड ऐसे ऐसे ना ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके वो लोग क्रिएचर्स बनाते हैं कि कोई फायरी आदमी घूम रहा है ऐसे, आग आग सब तक ऐसे। तो ये सब भगवान ने बताया सर्वगत। जैसे हमने पिछली बार ये उदाहरण लिया था कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर अपना चेंबूर में जो है प्लांट, ऐसे ऐसे वहां पे विषैले रसायन, पॉइजनस केमिकल, उनको जब वो केमिकल के बैरल्स को खाली किया गया तो नीचे जीवाणु, जीवित जीवाणु दिखे गए, जिनके फ्यूम से आदमी मर जाता, लेकिन जीवित जीवाणु, और वो रसायन निकालने के बाद मर गए। तो पॉइजनस रसायन में जी रहे थे वो सर्वगत। और कितने सारे ऐसे विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, जीवन है। मैं कुछ एक हफ्ते पहले जो हम लोग जहां रहते हैं वहां मैंने देखा कि एक जैसे ये कार्डबोर्ड का टुकड़ा जैसे कुछ गिरा हुआ था जमीन पर, तो मैं देखा था तो हिलने लगा, तो पंखा बंद है, खिड़की बंद है, ये हिल कैसे रहा। तो एकदम वो जैसे कोई छोटा सा कोई लकड़ी कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है, वो कीड़ा था कोई, खाली एक जैसे तिनका होता है, वो तिनके के जैसा कीड़ा था, उसके अंदर देखिए, उसके अंदर आत्मा, उसके अंदर हृदय, परमात्मा भी उसके अंदर, इतना सा लकड़ी के टुकड़े जैसा हिल रहा। और एक और उदाहरण प्रभुपाद देते थे, कई बार हम पुस्तकों के अंदर देखते हैं इतने छोटे छोटे से कीड़े पुस्तकों के अंदर, कई बार जब भगवत गीता हम 10 साल बाद खोलते हैं तो फिर ये भी उदाहरण प्रभुपाद देते, इतने छोटे छोटे से, मतलब उनका कोई मेजरमेंट भी नहीं कर सकता, उसके अंदर उसका हृदय भी है, उस हृदय के अंदर आत्मा है, उसके अंदर परमात्मा भी है, सब कुछ उसके अंदर फिट है इतने से। तो सर्वगत। इसके पश्चात अब भगवान एक और गुण बता रहे हैं, स्थाणु। स्थ का अर्थ है जो स्थित है, अणु का अर्थ छोटा सा कण, कि छोटा सा कण ये आत्मा इस शरीर में कहां स्थित है। उपनिषदों के अनुसार क्या बताया गया है कि ये छोटा सा कण आत्मा का कितना छोटा है, सबसे पहले तो केशाग्र षट भागस्य षटदा कल्पितस्य च, कि केश के अग्र भाग को यदि 10,000 भागों में काटा जाए तो वो एक भाग जो उसका 10,000वां एक भाग वो है जो यहां पर बताया गया है, छोटा सा कण आत्मा का। और वो स्थित है प्राणश्चित्तम, कि चित्त हृदय, हृदय के एरिया में वो छोटा सा कण स्थित है। तो अब देखिए, भगवान ने नित्य सर्वगत स्थाणु, कि पहले आत्मा को बताया है कि नित्य है, इसका कोई इतिहास नहीं, फिर भगवान कहते हैं सब जगह व्याप्त, फिर सब जगह व्याप्त होने के साथ साथ फिर भगवान कह रहे हैं कि ये स्थाणु, कि ये मत समझना कि ये सब जगह व्याप्त है तो एक जगह पर स्थित कैसे हो सकता है। फिर दोनों में विरोधाभास लग रहा है ना, कि सर्वगत और फिर स्थित एक जगह पर। यहां पर हम समझ में आ रहा है हमें जो चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत स्थापित किए, अचिंत्य भेद आभेद तत्व, साइमल्टेनियस वन एंड डिफरेंट, वननेस एंड डिफरेंस। ये थोड़ा टेक्निकल है, ये दो शब्दों, ये दो गुणों के द्वारा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत स्थापित किया उसे भगवान श्री कृष्ण स्थापित कर रहे हैं कि सर्वगत होने के साथ साथ ये आत्मा एक जगह स्थित है और छोटा सा कण। तो प्रभुपाद को जब पूछा गया कि प्रभुपाद हाथी का इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़े हाथी के शरीर में इतना सा आत्मा, तो प्रभुपाद ने कहा हां। और प्रभुपाद उदाहरण दिए कि जैसे पोटेशियम साइनाइड का एक बूंद इतने बड़े शरीर को खत्म कर सकता है, एक बूंद। तो यदि एक केमिकल यदि इतने बड़े शरीर को खत्म कर सकता है जो कि भौतिक है, इट्स मटेरियल, तो आध्यात्मिक कण इतना सा भी क्यों ना हो, वो हाथी जैसे इतने बड़े शरीर को चलाता है, डुलाता है, फिराता है, जो भी करता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आत्मा सर्वगत होने के साथ साथ एक जगह स्थित है। तो यहां पर जो इंपर्सनलिज्म, मोनिज्म, ये जो निर्विशेषवाद और साकारवाद, ये दोनों का मेल भगवान इस एक श्लोक में इन दो गुणों के द्वारा स्थापित कर रहे हैं, सर्वगत और स्थानु ये कहते हुए। अब आगे भगवान कहते हैं कि आत्मा अचल है। आप लोग सोच रहे होंगे फिर ये क्या चित्र है, ये क्या है? कठपुतलियां। तो यदि पूछा जाए कि कठपुतली क्या अचल है या चल, कठपुतली अचल है लेकिन जो चलाता है होना चाहिए पपिटियर, कठपुतली कार। तो आत्मा हालांकि अचल बताया गया है लेकिन तीन गुणों के अधीन होकर जब इस भौतिक शरीर में ये आत्मा स्थित रहता है तो फिर ब्रह्मांड भ्रमिते, ये ब्रह्मांड में भ्रमण करते 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 नाना योनि भ्रमण करे, अलग अलग योनियों में ये भ्रमण करता है हालांकि है अचल। तो यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि अचल है तो फिर अलग अलग योनियों में कैसे भ्रमण कर रहा है, इमोवेबल हो गया ना वो, तो वो तीन गुणों के अधीन होकर जब वो कर्म करता है शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, अहंकार के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये जो कर्म करता है, हालांकि एक दृष्टिकोण से शरीर कर्म कर रहा है परंतु शरीर के अंदर जो एनर्जी वो किसकी है, वो आत्मा की है। तो ये भी कह सकते हैं कि शरीर के द्वारा आत्मा कर्म कर रहा, और इसलिए एक दृष्टिकोण से शरीर भी अचल है क्योंकि शरीर तो मरा हुआ है कि नहीं। जो निर्जीव वस्तु होती है उसे भी अचल बोल सकते हैं ना, तो शरीर अचल है और आत्मा को अचल बताया गया है, तो फिर ये सब इतना सब चल फिर कौन रहा है? या तो आध्यात्मिक संसार में भगवान कठपुतलीकार हैं स्वयं जो कि सबको चलाते फिराते हैं, और इस भौतिक संसार में प्रकृति तीन गुण, वो तो तीन गुणों के अधीन आकर ये शरीर और ये आत्मा और सूक्ष्म शरीर ये सब कुछ चलता फिरता हमको दिखता है। तो इसलिए हमें ये जो अचलता है आत्मा की उसे भी उस दृष्टिकोण से देखना है कि किसके अधीन आत्मा है, उस हिसाब से वो आत्मा चलता फिरता है। अब सनातन बहुत ही विशेष गुण है आत्मा का, आत्मा सनातन है। तो श्रील प्रभुपाद इसकी व्याख्या किए हैं कि सनातन क्या क्या है। अब सनातन भगवान है, जीव, भगवत धाम और भक्ति, और इन चारों के विषय में भगवत गीता में भगवान बताए। अलग अलग अध्यायों में, श्लोकों में भगवान अपने धाम के विषय में, कैसे अपना धाम सनातन है, तद धाम परमम मम, कि कैसे भगवान का धाम सनातन है और भगवान सनातन है, जीव कैसे सनातन है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, और कैसे भक्ति नेहा भिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कैसे भक्ति सनातन है। सनातन का अर्थ जानते हैं ना, जो कभी जिसका नाश नहीं हो सकता। तो अब जब आत्मा और आत्मा के संदर्भ में भगवान, भगवत धाम और भक्ति सनातन बताई गई है, और यही आत्मा का संबंध आध्यात्मिक संसार में, तो सोचिए आध्यात्मिक संसार में सनातन भगवान के सनातन धाम, सनातन भक्ति को छोड़कर इस भौतिक संसार में ये आत्मा कहां पर अटक गया है? अनित्य भौतिक संसार, अनित्य भौतिक प्रकृति, इंद्रिय भोग और भौतिक शरीर, टोटल ऑपोजिट। वो जो चार चीज, यदि आपको याद है, वो चार चीज हमने जो अभी देखी सनातन के संदर्भ में, अब सनातन का विपरीत है अनित्य, टेम्पररी। सो टेम्पररी के संदर्भ में देखिए, शरीर के संबंध में भौतिक प्रकृति, भौतिक ये भौतिक संसार के अंदर जो लॉज है वो, और इंद्रिय भोग और भौतिक शरीर। तो ये हम ये दोनों की चर्चा, सनातन या सनातन की चर्चा अनित्य से, अनित्य की चर्चा सनातन से हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान यहां पर आत्मा के इतने सारे गुण बताते हुए अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि अर्जुन ये युद्ध तो छोड़ दो, इनको मारना तो छोड़ दो, तुम पहले अपना कर्तव्य जानो कि तुम भी सनातन जीव इस अनित्य शरीर में अटके हुए हो, और कैसे तुम्हें इस अनित्य शरीर से, इस अनित्य भौतिक संसार से, अनित्य इंद्रिय भोग से बाहर निकलना है। मतलब यहां पर यह समझिए कि आत्मा की दुर्दशा क्या हुई है। देखिए, जैसे एक इंग्लिश का फ्रेज है, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, डालने की कोशिश कीजिए, कितना मुश्किल होता है वो डालना, कि वो होल राउंड है और ये स्क्वायर कोई लकड़ी आप उसमें डालने की कोशिश कीजिए, या तेल और जल मिलाने की कोशिश कीजिए, ऑयल एंड वाटर, कभी मिलेगा नहीं हो। तो उसी प्रकार से इस भौतिक संसार में आत्मा और शरीर का एक साथ रहना, आत्मा और शरीर का एक साथ रहना किसके बराबर है? जैसे शेर और हिरण का एक साथ एक पिंजरे में रहना। इसलिए देखिए कि न तो शरीर वो सुखी रहता है, न आत्मा उस शरीर के अंदर सुखी रहता है, क्योंकि दोनों के वो क्या बोलते हैं, विपरीत गुण है। जैसे एक कथा है, एक बार एक राजा वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था, तो अपने राज्य में भ्रमण करते हुए उसने एक बकरी को देखा, तो बकरी की आदत खा रही थी घास फूस और पत्ते, इनको खा रही थी। तो राजा ने देखा वो खाई जा रही, खाई जा रही। कुछ समय राजा वहां पर रुका, फिर भ्रमण करते वापस जब लौट रहा था तब भी वो बकरी खाई रही थी। राजा को आश्चर्य हुआ कि ये पिछले 1.5 घंटे से बकरी खा रही है, इतना कैसे खा सकती है बकरी। बोलते ना बकरी की जैसे मत चरो। तो राजा, अब कई बार राजा होते हैं कि उठपटांग चीजें करना पसंद करते हैं, तो उसने अब घोषणा कर दी कि एक ऐसी बकरी को कोई पेश करो कि जिसको चारा खिलाते रहो खिलाते रहो खिलाते रहो, मोटी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी कैसी बकरी हो सकती है कि वो तो एक तो खाती खाने में उनको उनको वो चारा खाने में इतना उनको उनकी रुचि होती है, और वो मोटी ना हो बकरी। तो फिर अब ये स्पर्धा लगाई गई, तो एक ने उसने कहा कि हाँ मैं ये स्पर्धा में जीत जाऊंगा। तो नियम था कि बकरी को खिलाते रहना है 24 घंटे, लेकिन बकरी का वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो 1 महीना उसने बकरी को राजा के सामने 24 घंटा खिलाया हर दिन, और बकरी वजन बढ़ना तो दूर, वजन घट रहा था उसका, वजन घट रहा था उसका। तो राजा भी अचरज, तो घास को देखता है, घास में कुछ वो तो नहीं मिला है, आजकल मिलते हैं ना वो सब फैट फ्री, ये फ्री वो फ्री, फैट फ्री ग्रास। तो फिर राजा ने जब पूछा कि भाई ये तुमने कैसे हासिल किया, तो उसने दिखाया कि बकरी को जहां पर वो घास खिला रहा था, बकरी के सामने उसने एक पिंजड़ा रखा था शेर का। तो शेर के पिंजड़े को देखते हुए खाती थी घास शेर को, तो टेंशन के मारे वजन बढ़ता ही नहीं था उसका। इसलिए बोला जाता है टेंशन में जब खाते हैं ना तो वो कहीं नहीं जाता। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये दोनों, देखिए बकरी और शेर, ये दोनों जंगल में कभी साथ में नहीं रहेंगे। तो इनको यदि साथ में भी कर दो, तो बकरी वो खा रही है खा रही है खा रही है, लेकिन फिर भी शेर सामने है तो कोई उसको सुख नहीं, उसका उसका कोई इंद्रिय भोग नहीं। तो वैसे ही आत्मा इस भौतिक संसार में भोग करने आया, लेकिन शेर रूपी जो काल है उसके साथ रहता है हर समय आत्मा। तो न तो आत्मा सुखी है न ये शरीर। तो इसलिए भगवान यहां पर अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम यदि इनको मारोगे ना, तो तुम इनको ये जो तकलीफ में है शरीर के, ये जो अनित्य शरीर में जो इनका सनातन आत्मा दुख भोग रहा है, उनका उद्धार करोगे तुम, उस सेपरेट करो इनको। और वो यहीं पर जब तुम सेपरेट करोगे, ऐसे यदि वो कहीं मर गए तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा, परंतु कुरुक्षेत्र की रणभूमि में मेरे सामने जब उनको सेपरेट करोगे तो वो सनातन आत्मा मेरे सनातन धाम को प्राप्त होगा। तो इसलिए ये अनित्य शरीर और सनातन आत्मा का जो कनेक्शन है वो इस प्रकार से समझ में आ रहा है। अब अंत में यदि ये प्रश्न पूछा जाए, यदि आत्मा सनातन है तो अनित्य शरीर बनाने की क्या आवश्यकता थी? वैलिड क्वेश्चन। तो ऐसा टिकाऊ आत्मा उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते थे ना, उसके ऊपर ये इसका आवरण डालना शरीर का जो कि अनित्य नश्वर, जो जिसको काटा जा सकता है जलाया जा सकता है ये वो, तो इसका उत्तर कैसे दोगे आप यदि भगवान या अर्जुन पूछे ये प्रश्न कि यदि आत्मा ऐसा है जो सनातन है टनाटन है तो इस टनाटन सनातन आत्मा को इस अनित्य शरीर के अंदर डाल के क्यों भेजा? हाँ शरीर को देखेगा तो भगवान के धाम की याद आएगी। लेकिन वो आत्मा को देखे तो ज्यादा याद आएगी ना, कि देखो कितने सारे आत्मा घूम रहे हैं। खुद के भी आत्मा को देखेगा तो आत्म साक्षात्कार देखते देखते ही हो जाएगा। ये देखिए, इतने सारे जो शरीर हैं, ये देखिए यहां पर, ये स्लाइड में तो इतने फिट हुए, कितने अजीबोगरीब शरीर है देखिए। ये सबके अंदर आत्मा, कोई उल्लू, कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बकरी, कोई छिपकली, कोई सांप, कोई मेंढक, कोई हाथी, कोई मनुष्य, कितने सारे योनियां हैं? 84 लाख। ये 84 लाख जो शरीर हैं, ये आत्मा की भौतिक इच्छा है भोग करने की। द 84 लाख डिफरेंट स्पीशीज द बॉडीज आर नथिंग बट द मटीरियल डिजायर्स ऑफ द सोल टू एंजॉय। तो हमारी ये इच्छा थी कि मुझे ये मेंढक का शरीर मिलना चाहिए, कूदू ऐसे। हाँ, ये जीव की इच्छा थी इसलिए उसको ये शरीर मिला। चलो फिर कूदते रहो, टर्टर करते रहो। हमारी इच्छा थी कि मुझे हाथी की तरह दिन भर खाना है, खाते रहो, इतना बड़ी महाकाय होना चाहिए मेरा, तो बन गए हाथी। तो वैसे ही ये जितने सारे अलग अलग शरीर जो देखे जाते हैं, ये सब हमारी इच्छा, ये भगवान की इच्छा नहीं थी। ये प्रश्न पूछा था कि भगवान ने क्यों हमको ये शरीर दिया? नहीं, ये हमारी इच्छा थी। हमने हट रखकर हमने कि मुझे नहीं ऐसा शरीर दो, ऐसा शरीर, और हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार फिर भगवान ने प्रकृति को कहा। प्रकृति क्या है? वो फैक्ट्री, ब्रह्मा जी वो फैक्ट्री के ओनर, भौतिक प्रकृति वो फैक्ट्री जहां पर शरीर बन बन के, चलो इसको ये शरीर, उसको ये शरीर, इसके कर्मों के अनुसार, इसकी इच्छा के अनुसार इसको ये देते। जैसे प्रभुपाद, वो भगवद गीता में आप चित्र देखोगे, कईयों को बस दिन भर खाते रहो खाते रहो खाते रहो, तो मरते समय यदि वो इच्छा से वो मरते हैं कि मैं ऐसा मुझे शरीर मिले कि मैं दिन भर खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं, तो फिर सुअर, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, दिन भर खाता रहता है खाता रहता है। खाता भी मल है तो फिर होगा क्या, हो बनेगा भी वही। तो जो जिस प्रकार की इच्छा और जिस प्रकार का कर्म करता है, उस प्रकार से उसको ये अनित्य शरीर प्राप्त होता रहता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में हमें रखनी होगी कि यदि मुझे ये जो कालचक्र है, ये जो कार्यक्रम है, सनातन आत्मा को ये अनित्य शरीर प्राप्त होने का ये जो कार्यक्रम, इसको काटना है, तो शुरुआत करनी है इच्छा, क्योंकि इच्छा से ही हमारी शुरुआत हुई यहां आने की। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो उसे यदि रिवाइंड करना है, यदि अंडू करना है, तो हमें इच्छा से प्रारंभ करना है। और कौन सी इच्छा होनी चाहिए? भगवद गीता में भगवान अपने आध्यात्मिक संसार के विषय में, श्रीमद् भागवत में आध्यात्मिक संसार के विषय में, ये इतने सारे, इतना जो विज्ञापन भगवान कर रहे हैं, ये किस लिए? ताकि हमारे अंदर एक इच्छा जागृत हो कि मैं भी अब स्वतंत्र रूप से उस भगवत धाम को प्राप्त करना चाहता हूं जहां पर मेरे सनातन आराध्य देव हैं, जो मेरा सनातन घर है, जहां पर मैं सनातन भक्ति, और जो मेरा स्वरूप है, कौन सा? आत्मा का स्वरूप, सनातन स्वरूप में स्थित हूं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? तो अगले श्लोक में अब भगवान इन्हीं कुछ और गुणों को आगे बता रहे, अव्यक्तो, कि अब कैसे आत्मा अव्यक्त है। तो इसलिए आज हमने वो निर्विशेषवाद या मायावाद सिद्धांत को नहीं लाया, क्योंकि अगले श्लोक में अब मायावाद का खंडन होगा कि हालांकि आत्मा को अव्यक्त बताया गया है, इनविजिबल, लेकिन फिर भी उसका व्यक्तिमत्व क्या है, अव्यक्त आत्मा का व्यक्तिमत्व क्या है, इसकी चर्चा होगी अगले बुधवार। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय।
श्रीमान शिक्षाष्टकम् प्रभु की जय। हरे कृष्णा। कुछ विशेष सूचना इस प्रकार से है, आने वाले 31 तारीख को शनिवार को हमारे यहाँ पे परिवर्तन का कार्यक्रम है, तो सब भक्तों को निवेदन है कि जिन्होंने भी एडवांस पासेस लेके गए इस परिवर्तन के, तो आज ही जिनको भी उन्होंने पास दिया है उनके टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और नाम, इसका लिस्ट और जो भी लक्ष्मी है वो जमा करें, और जिनको भी पासेस चाहिए तो वो कृपया आज ही खरीदें, क्योंकि जो भी भक्त हर बार सत्संग कार्यक्रम में आते हैं उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये कृपया सब भक्त ध्यान में रखें कि जो भी भक्तों को परिवर्तन के पासेस चाहिए, जो रेगुलर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन कोई नया आ रहा है तो उनको हम दे सकते हैं, तो कृपया इसका आप ध्यान रखें। और जो भी भक्त एडवांस पासेस लेके गए आज ही उनका जो भी हिसाब है या उनकी लिस्ट नामों की और फोन नंबर्स की और लक्ष्मी आज जमा कर दे काउंटर पे। और जो भी जन्माष्टमी की सेवाओं की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है वो कृपया अकाउंट काउंटर पर बाहर संपर्क करें। और जो भी भक्त इस कार्यक्रम में पहली बार उपस्थित हुए हैं उनको हम निवेदन करते हैं, 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए। जो भी लोग इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं सत्संग कार्यक्रम में हरे कृष्णा मंदिर में, उनको हम निवेदन करते हैं 2 मिनट के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाइए ताकि वैष्णव पद्धति से हम आपका स्वागत कर सकें। जो भी लोग आज इस कार्यक्रम में पहली बार आए हैं कृपया 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कीमती समय निकाल के हमारे इस मंदिर में पधारे और आपका कीमती समय बिताए। तो हम श्री श्री गौरीताय श्री प्रभुपाद जी और सारे वैष्णवों से यही प्रार्थना करेंगे कि आज की शाम आपके आध्यात्मिक जीवन की एक अच्छी शुरुआत रहे। तो हम सब भक्त इनका वैष्णव पद्धति स्वागत करना चाहेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया अपने जगह पे बैठ जाइए। जो भी प्रभु जी जब खड़े थे उनके लिए सूचना, जहाँ पे श्री प्रभुपाद जी का जो आप पूजा विधि देख रहे हैं वहां पे हमारे उत्तम भक्ति प्रभु नाम के भक्त खड़े रहेंगे, तो जो भी प्रभु जी खड़े थे वो उनको मिले ताकि इस्कॉन की जो भी अधिक जानकारी है उनको प्राप्त हो। और जो भी माता जी खड़ी हुए थे उनके लिए हमारे यहाँ पे सिद्ध रूपिणी माता जी है, उनको आप ढूंढे और उनसे आप अधिक जानकारी प्राप्त करें। वैसे हमारे मंदिर में हर बुधवार को ये गीतामृत कार्यक्रम होता है, हर रविवार को सत्संग कार्यक्रम होता है शाम को इसी समय पे, और युवाओं के लिए प्रेरणा नाम का उत्सव होता है इंग्लिश में, और युवतियों के लिए चेतना कार्यक्रम होता है, और जो प्रोफेशनल्स है जो फैमिली वाले लोग हैं उनके लिए हम परिवर्तन कार्यक्रम रखते हैं जो अंग्रेजी में होता है, तो वो भी आने वाले 31 तारीख को होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी कीर्तन होगा और बाद में सबके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था होगी।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा।